दुनिया एक आवाज,
एक दुनिया एक आवाज,
ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज।
आवाज नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए,
आवाज जो नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए, ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज।
नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज की विशेष श्रृंखला जल है तो कल है में आपका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है कहीं भी हो गंदगी खत्म होगी जिंदगी। दोस्तों, जल है तो कल है यह कार्यक्रम इंडिया वाटर पोर्टल और वन वर्ल्ड साउथ एशिया के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी समय पर रोजाना 23 मार्च तक हमारे कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम की मेहमान हैं वाटर एड से इंदिरा खुराना जी। इंदिरा जी, हम आपका जल है तो कल है कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
धन्यवाद चिराज जी।
WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 110 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं क्योंकि उन्हें शौचालय उपलब्ध नहीं है। इनमें से आधे से अधिक भारतीय हैं। इस देश के 63 करोड़ लोगों के पास शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। इंदिरा जी, इस बार के विश्व जल दिवस का संदेश है एक स्वस्थ विश्व के लिए साफ पानी, क्लीन वाटर फॉर हेल्दी वर्ल्ड। क्या कारण है कि एक तरफ जहां देश आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत के लिए जय हो का नारा दुनिया भर में लगाया जा रहा है और एक परमाणु शक्ति के तौर पे हम मान्यता पाना चाहते हैं, ऐसे भारत में भी आखिर पानी और स्वच्छता की क्या स्थिति है और जो स्थिति है उसके क्या कारण है?
देखिए सिराज जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ों को की तुलना करना जरा मुश्किल है क्योंकि चुनौतियाँ अलग हैं। और जहाँ पे लोगों को साफ पानी मिलना और स्वच्छता के लिए फैसिलिटीज़ मिलना, उसके जो चैलेंजेस हैं वो भी अलग अलग हैं। अगर आप हमारे देश को देखेंगे तो ये, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पे अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग के हैं। यहाँ पे हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी अलग हैं, हमारी जो रिलीजन्स हैं वो भी अलग हैं। और अगर हम वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें या जो हम इकोलॉजिकल जोन्स बोलते हैं, इस देश में 16 तरह के अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स हैं। तो कहीं पे आपके पहाड़ हैं जहाँ आपके आपके मूसलाधार बारिश होती है, कहीं पे आपके रेगिस्तान हैं जैसे कि हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट भी है जैसे कि आपका लेह और लद्दाख है, कोस्टल एरियाज है। तो अलग अलग जो हमारे देश में ये जो रीजन्स हैं उसके चैलेंजेस और चुनौतियाँ अलग अलग हैं। तो इसलिए इन चुनौतियों को डील करने के लिए, मतलब ये कंपेरिजन सही नहीं है।
मतलब आपको लगता है कि अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग प्लानिंग करनी होगी,
मतलब चुनौतियाँ अलग अलग हैं। और रहा आपका प्रश्न कि एक तरफ हम मतलब बड़े अपने आप को डेवलप्ड कंट्री की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी आजकल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो कई जगह की सर्वेज हो रही हैं ग्लोबली पूरे विश्व में, तो ये जो वाटर की सस्टेनेबिलिटी का जो एक मुद्दा है ये कई जगहों से निकल के आ रहा है और ये कई जगहों पर ये एक शायद एक विकास का एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है।
एक सवाल इंदिरा जी बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, 19 करोड़ लोगों को ही सिर्फ साफ पानी उपलब्ध है, क्या आपको लगता है कि सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता आखिर क्या कारण है कि लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं नदियों के देश होने के बावजूद भी?
देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ क्या क्या अप्रोचेस सरकार ने यूज किए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। तो पहले तो हमारा जो सिस्टम था वो जो सर्फेस वाटर बॉडीज जो हम कहते हैं, जैसे नदी है या पुखर है या पौंड है या तालाब है, उससे हम लोग, या आपका डग वेल है, कुआं है,
जी,
उससे लोग अपने पानी की, पीने के पानी की और बाकी जो घर के उनके पानी की जरूरत थी उससे वो उसकी डिमांड मीट करते थे। पर क्योंकि ये पानी धीरे धीरे गंदा होने लगा, इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन कीटाणु के कारण लोगों को बीमारियां होने लगी, तो फिर ये एक अप्रोच आया कि इसको छोड़ के हम क्यों नहीं हम जो भूजल है उसको हम यूज़ करें
जी जी।
और फिर हमारी जो ये मूवमेंट थी सरफेस वाटर बॉडी से, हमने वो डगवेल्स और हैंडपम्प और ट्यूबवेल्स की तरफ हम जाने लगे,
मतलब ग्राउंड वाटर की,
ग्राउंड वाटर की तरफ हम जाने लगे, क्योंकि उस टाइम हमें लगा कि वो तो बिल्कुल साफ पानी है, उस पे उसमें कोई पोल्यूशन की बात नहीं हो सकती। पर हमने इस पानी को इतना एक्सप्लॉयट किया, इतना ज़्यादा यूज़ किया कि अभी उसमें हमारी जो फ्लोराइड और आर्सेनिक और ऐसे और सारी चीज़ें उभर के आने लगी।
आपके लेखों में मैंने कई बार देखा कि पानी और स्वच्छता की बात करते हुए अधिकारों की बात आप करती हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि ये तो जो नेचुरल प्रोसेस है, अगर लोगों को राइट्स इसका दे दिया जाए कि साफ पानी तो देना उनके अधिकार की बात है, तो ये दोनों में कंट्रोवर्सी जैसी नहीं लगती?
As a human right, we should all have access to safe water and sanitation. और अगर हम अपनी constitution को देखें और उसमें एक article 21 है जिसमें लिखा है that the state guarantees right to life to every citizen of India.
जी जी।
और अगर हम high court और supreme court की कई judgments देखें तो वे जो right to life है उसमें उन्होंने interpretation ऐसे दिया है कि it includes the right to safe water and sanitation. पर ये अगर एक right को दे देना, अगर एक्नॉलेज करना कि हाँ ये लोगों की राइट है, पर उसको फिर लोगों को देने के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो सिर्फ कागज़ों पे यार आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रह जाएगी। एक तरफ तो ये इशू है कि ये क्योंकि ये राइट है और ये लोगों को मिलना चाहिए, दूसरी तरफ ये भी एक इशू हमारे देश के सामने बहुत बड़ा है कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। एक तो मतलब क्वालिटी की तो बात आपने करी, क्वालिटी की बात भी है और क्वांटिटी भी की भी बात है।
जी जी।
तो अगर आपके पास पानी ही नहीं है तो उसके आप क्वालिटी की बात तो उसके बाद ही करेंगे। जैसे हम कई बार अगर गांव में जाते हैं और जो बहनें हैं जो महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको साफ़ पानी पीना चाहिए और बच्चों को साफ़ पानी पिलाना चाहिए, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि पानी कहाँ है, हमको पानी मिलेगा कहाँ से, पहले तो हमको वही हमको दिक्कत है, तो उसी के बाद ही उनकी मतलब वो कुछ क्वालिटी वगैरह की बात सोच सकते हैं।
इस परिस्थिति के बावजूद भी जो संगठन हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनको किस किस समुदायों पर फोकस करने की ज़रूरत है और किस किस इलाके में फोकस करने की ज़रूरत है ताकि ये काम तेज़ी से भारत में चल सके?
अब जैसे हमारे सरकार की कई ऐसी स्कीम्स हैं, सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं जिसको हम एंटाइटलमेंट्स बोलते हैं।
जी जी।
तो ऑलरेडी इसकी प्रोविजन कर दी है हमारी सरकार ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन करी है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन होने के बावजूद तभी भी ये प्रोग्राम्स एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं होते।
जी जी।
तो उस टाइम पे ये जो सर्विस प्रोवाइडर की जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं है।
जी जी।
तो इसलिए हम सबका ये एक फर्ज भी होता है कि जो जो गरीब है, जो बिछड़ा हुआ है, उसको हम जाके बताएं कि देखो सरकार की तरफ से आपको ये मिल सकता है और इसको हासिल करने के लिए आपको ये करना है।
जी।
और जो आपका लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर है या इंजीनियर है या आपका पंचायत है या जो भी है, उसके पास जाके बोलिए कि देखिए सरकार की तरफ से ये हमको हमारा हक है,
जी जी।
हमें हमारा हक दीजिए। तो अगर ये लोगों की आवाज़ ज़्यादा उठती जाएगी तो हमारी सरकार भी ज़्यादा जवाबदेही बनेगी।
वाटर एड दुनिया भर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाला है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टॉयलेट क्यू बनाने की दिशा में आप लोग बढ़ रहे हैं, तो ये क्यों सोच करके और क्या सोच करके बना रहे हैं?
देखिए ये एक एकदम ग्लोबल एफर्ट है और इसे कई महीनों से इस पे काम चल रहा है और ये सिर्फ वाटर एड नहीं है, ये कई और संस्थाएं साथ मिलके इसको आगे मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके पीछे दो इसके मकसद हैं, एक तो टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टॉयलेट का एक्सेस नहीं है, जो शौचालय उनके पास शौचालय नहीं है और जो जिनको बेबस होके खुले में शौच करना पड़ रहा है।
जी।
तो इसलिए ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टॉयलेट क्योंकि एक ये है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंटर करें ताकि इतने लोग बिटवीन 20 और 22 मार्च के बीच में इतने लोग पूरे विश्व में मिला के लाइन में खड़े हुए थे टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट कि हमको टॉयलेट्स चाहिए फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। और इसका दूसरा भी एक मेजर खास मकसद यह है कि अगले महीने वाशिंगटन में जो खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो वित्त मंत्री हैं वो वहाँ पे मिलेंगे और थोड़े ऐसे भी देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो भी उस मीटिंग में जाएंगे और वहाँ पे हम ये फोकस लाना चाहते हैं कि ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जो अपना सैनिटेशन टारगेट मीट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और एक अच्छा सा प्लान बनाने के लिए उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो हमारा ये मेन मकसद है कि ऐसा कोई देश नहीं होना चाहिए जो सैनिटेशन टारगेट को मीट करने से फेल करे सिंपली बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है और एक अच्छा सा एक्शन प्लान नहीं है। तो ये टॉयलेट क्यू का ये दो मकसद हैं। और भारत में कई कई स्टेट्स में, अगर मैं सिर्फ वाटर एड के जो हम
जो आपके सहयोगी संस्थाएं
हमारे जो सहयोगी संस्थाएं, हम 10 स्टेट्स में 10 स्टेट्स में काम करते हैं, उसमें हर एक स्टेट में हमने हमारे पार्टनर के साथ और बाकी लोगों के साथ वर्ल्ड टॉयलेट क्यू का प्रोग्राम हो रहा है और बड़े इंटरेस्टिंग
दिल्ली के आसपास कहां,
दिल्ली में हमारे 3 पार्टनर्स हैं, वहां पे भी ये क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश के 4 शहरों में हो रहा है, मेयर कोशिश कर रहे हैं कि मेयर भी आए, झारखंड में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, तो ये तो जस्ट सिर्फ जो हमारे सहयोगी हैं,
जो आपके सहयोगी संस्था,
इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है और कहने के वो भी क्यू में
इस कार्यक्रम में करें। इंदिरा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद चिराग जी, आपने श्रोताओं के साथ बात करने का मौका दिया।
दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपके पास जल से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो अपने मोबाइल पर टाइप करें जल और प्रश्न लिखें और भेज दें 9811846246 पे। नंबर दोबारा सुन लें 9811846246। दोस्तों, यह कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट hindi.indiawaterportal.org और edaa.in पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, इस वादे के साथ कल इसी वक्त एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
एक दुनिया एक आवाज,
एक दुनिया एक आवाज,
ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज।
की ओर बढ़ाए
आवाज, जो नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए, ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज। एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज।